الله 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 الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت به الاسر. موزه سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, تو جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہاں اس حصے میں انسانی مزاج اور اللہ جل شانہ کی عطا مختلف پہلوؤں میں بیان فرمائی گئی ہے. انسان جب تجاوز پر ہوتا ہے تو اسے دنیا کی حیات میں مختلف پہلوؤں سے جو تنگی یا تکلیف یا فراغت کوئی پہلو بھی نصیب ہوتا ہے, اس میں کیا وہ تعلق مالا کی طرف پلٹتا ہے یا نہیں, چونکہ ہر پہلو میں اس کے لیے سبق بھی ہے, رہنمائی بھی ہے, تنبیہ بھی ہے. یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے دوسرا پہلو, چونکہ اس سے پہلے حصہ جو بیان فرمایا گیا ہے وہ تنگ دستی اور بیماریوں کے حوالے سے ہے, پھر وہ حصے جو معمولات کے تجاوز میں ہیں ان سے قلب کا سخت ہونا بیان فرمایا گا, اور وہ کیفیت اور وہ حال کہ جب دل سخت قلب سخت ہو جاتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کی گرفت بڑھ جاتی ہے, اس کے وساوس بڑھ جاتے ہیں, اور اعمال بد بھی جو ہیں وہ اعمال صالح کی طرح دکھاتا ہے کہ جیسا آپ نے کیا یہ تو آپ کا حق تھا ایسا کرنا, اور وہ انہیں خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بدلے میں وہ مزید خرابی مزید گناہ میں دہستے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تنگ دستی یا بیماری میں کوئی پکڑ آئے تو اس کا علاج اسباب کے ساتھ جو اخروی حیات کے لیے ضروری ہے وہ عجز و انکساری ہے. تو یہاں فرمایا, تو جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر شے جو ہے اسے بے حساب عطا فرما. اب ایک پہلو کہ تنگ دستی سے نصیحت لے, جب وہ تنگ دستی سے بیماری سے نصیحت نہیں لی, اللہ کریم غفور الرحیم ہے, اللہ جل شانہ کا اور مخلوق کا تقابلی پہلو نہ بنتا ہے نہ ہو سکتا ہے, نہ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ اگر کوئی یہ کم و بیش الفاظ بیان کرے تو بھی. قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ پہلو بیان فرمائے گئے ہیں, اور جو انسان نقصان اٹھاتا ہے یہاں, جو نقصان اٹھاتا ہے اخروی حیات کا, جو نقصان پیدا کرتا ہے, اس سارے کا ذمہ دار وہ خود, اس کا اپنا کردار, اس کی اپنی چاہتیں, اس کی اپنی پسند ہے. اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم مخلوق پر ظلم نہیں کرتے, یہ ظالم ایسے ہیں کہ یہ ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہوتے ہیں. ہم معمولات زندگی میں غور کریں, چونکہ یہ مثالیں جو روزمرہ کی زندگی کی ہیں اس میں سے ہم ایک ہر ایک گزر رہا ہوتا ہے, اور اس گزرتے لمحات میں اگر اپنے معمولات سے سبق سیکھ لیا جائے تو یہ بہت آسان اور بہت سہل بات ہے سمجھنے کے لیے. اگر کسی کے ساتھ اچھا کلام دید یا عزت کی جائے तो शायद ये समझा जाता है अमूमी तौर पर कि वो मेरी इज्जत करे, मैं क्यों उसकी इज्जत करूं। अपनी अना या तकब्बर के पहलू में हम रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं। अल्लाह करीम तौफीक दे कि खलूस के साथ मखलूक खुदा को बंदा पेश आए, तो आप जितनी इज्जत बांटते हैं उससे ज्यादा जवाबन आपको मुयस्सर आती है। तो जब आप किसी के साथ इज्जत से पेश आ रहे होते हैं तो नतीजतन आपकी इज्जत हो रही होती है, तो आपने अपने हाथ, अपने जबान या अपने किरदार से अपनी ही इज्जत की तामीर की। अब जब समझ ना आए तो फिर मुतकब्बर कैफियत को लेकर बंदा बैठ जाए, जब वो एक अलग बैठ गया तो उससे किसी का सरोकार नहीं, तो किसी को उससे फिर क्या सरोकार। तो यहां जब हम नसीहत के पहलुओं में देखते हैं कि अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ पहलुओं से चीजें, जैसे तंगदस्ती है, बीमारी है, तो उसी के दूसरा हिस्सा फरागत है, अता है, चीजों की फरावानी है, तो दूसरे पहलू फिर अता फरमाए। अब जिसने पहले से नहीं समझा उसे दूसरा नसीब हुआ, जब दूसरे से नहीं समझे तो नतीजतन नुकसान अपना करेगा। और दूसरा नक्श जो पैदा होता है वो ये होता है कि नुकसान तो हमारा किरदार या हमारी सोच करता है। इंसान जब तजावज के हिस्सों पर जिंदगी बसर कर रहा होता है तो वो ये समझता है ये तकदीर इलाही है। और जब कोई कामयाबी नसीब होती है, कहीं किसी चीज से हासिल होता है, तो वो ये समझता है कि मेरी खूबी है। और कुरान करीम फरमाता है जहां नुकसान है वो तुम्हारा किरदार है, और जो तुम्हें मुयस्सर आया वो अल्लाह की अता है। तो अल्लाह जल्ला शानहू जब फरावानी अता फरमाते हैं तो फरावानी के साथ हक नसीब न हो और उसकी तरफ रगबत न हो तो फिर ये फरावानी मजीद एक इम्तिहान बन जाती है। अब दुनिया है ही, ये जो आलम फानी है ही इम्तिहान गाह। अब इस इम्तिहान गाह के जब पहराए पूरे होंगे, जैसे एक बच्चा इम्तिहान गाह में बैठा है, उसे कागज भी मुयस्सर है, उसे लिखना भी सबब दिया गया है, पेंसिल है, कलम है, जो मौजू है वो हिस्सा उसके पास वो भी है, वक्त मुकर्रा भी है, मुमतहिन ने उसे जो क्वेश्चन पेपर है वो भी दे दिया है। अब क्या है, अब उसके वो वक्त जो इम्तिहान में बैठने का है उसकी इब्तिदा हो। अब वो 2 घंटे है, 3 घंटे है, वो उसका वक्त शुरू हो। अब वो जो सवालात हैं उसके तहत पर्चे की हल की तरफ आ रहा है तो भी एक नतीजा है, तैयारी नहीं की, सवालात ही में उलझ कर रह गया है तो भी एक नतीजा है। अगर कुछ तैयारी है और कुछ नहीं है तो कोई सवाल लिख रहा है, किसी पर वो सोच रहा है, किसी शशोपंज में गुजर रहा है तो भी एक नतीजा है। अब जब वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पेपर ले लिया जाएगा, उसे इम्तिहान गाह से उठा दिया जाएगा। अब जो तैयारी उसने की, उस तैयारी को जो उसने पेश किया, तहरीर किया, उस पर उसके नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। अब यहां अगर आप गौर फरमाएं तो इस इम्तिहान गाह में आने वाले को दूसरा पहलू भी अता होगा कि अगर उसे फरावानी दे दी और वो अल्लाह करीम है, मुकाबिल नहीं है, वो मालिक हैं, हम मखलूक हैं, हमारा तकाबुली जायजा नहीं आएगा। और ये भी ख्याल रखना चाहिए, हम अपनी रोजमर्रा की हयात में दोस्तों से, अजीजों से, करीबी रिश्तेदारों से मामूलात पर एक अपने ताल्लुकात का बैलेंस रखते हैं। किसी ने सख्त बात की, दूसरा नालां या नाराज हो गया, किसी ने नरम बात की, दूसरे ने बदले में नरम बात न की, तो एक तकाबली हिस्सा चलता रहता है। फिर दोस्तों की दोस्ती में देख ले, वहाँ एक बात चलती रहती है, तो हमारा गुमान होता है, ख्याल होता है। और दुनिया के मामलात में बहुत हद तक दुरुस्त भी होता है कि मेरे जो मामलात हैं उसके मुताबिक अगला जो है उसका अब तल्लक मुझसे है। मैंने अगर उसके साथ ज्यादती की है तो वो मुझसे नालां होगा, भले ज़ाहरी तौर पर हमारा कलाम भी हो लेकिन वो मुझसे नालां हो। अगर किसी के लिए बेहतरी की है तो वो दिल से न भी चाह रहा हो लेकिन एक ममनून होने की कैफियत होगी। तो हम अपने मामूलात पर तल्लुकात को तोलते रहते हैं और यहाँ एक खता खा जाते हैं, ठोकर लग जाती है कि इसी पहलू को अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ भी मंसूब करना शुरू कर देते हैं। दीन का जानना और उस जानने का जो यकीन है कलब में, ना खाने दिल में कलब में, वो कैफियत और उस हाल से आशना करता है कि ये हकीकत समझ आती है कि यहाँ ताल्लुक खालिक और मखलूक का है, यहाँ बात बराबरी की नहीं है, ये हमजोली का ताल्लुक नहीं है, ये रब कायनात हैं और दूसरी तरफ उसकी मखलूकात में से एक जुज है और जिस मखलूक में से ये जुज है इसे उसके अदद का भी एहसास नहीं कि ये जो बशर है इसे कितनी तादाद में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, कितने गुजर चुके हैं, कितने मौजूद हैं। हम तो जितनी बार अपने मुल्क में शुमार सुनते हैं फिर उसके बाद बहस आ जाती है कि इतने बढ़ गए हैं इतने कम हो गए। इसी नुक्ते नज़र को देखें तो नहीं समझ आती कि कुल्ली तौर पर दुनिया का जो अदद है वो किसी के पास मौजूद हो, एक अंदाज़ा है लगभग की बात। तो ये जो मखलूक मौजूद है इसमें से भी अपने शुमार की समझ ना आ रही हो और दूसरी तरफ रब कायनात अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात है तो यहाँ जब ताल्लुक की बात आती है तो समझ आती है दीन का जानना कितना ज़रूरी है। इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस हयात, ये जो ज़ाहरी गोश्त पोश्त की हयात है ना, इसकी भी कामयाबी इसी में है और वो हयात जो ईमानी पहलुओं से नसीब होनी है जिसने दवाम बख्शना है उस जिंदगी का जिसमें खुशबख्ती है, कामयाबी है और अल्लाह जल्ला शानहू के कुर्ब के हिस्सों में रहना नसीब होना, उसके लिए भी यहीं से इब्तिदा है। और जब ये बातें नसीब हो जाएं, समझ आ जाए तो फिर ये भी समझ लग जाता है कि जितनी भी खता मैंने की है वो ऐसा बेनियाज है, खालिस दिल से उसके हजूर पलट आओ, अपना सर झुका दो, अपनी नफी कर दो, वो माफ फरमा देता है। चूंकि हमने अपनी हैसियत अपनी सोच से अमल किया, उस तरफ जब बात जाएगी उसकी अपनी शान है। हाँ, मारा वो हो गया जो मुकाबला आ गया, चूंकि गलत फहमी में है भूल गया है कि जिस वजूद की ताकत से तू अकड़ रहा है वो ताकत भी तो उसी की दी हुई है और तब तक है जब तक वो फुर्सत दे, जिस लम्हे चाहे वो ताकत सलब कर ले, तू तो इस काबिल नहीं कि होश में हो तो भी खड़ा हो सके। तो जब अल्लाह करीम की तरफ देखें या गौर करें तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती होगी है तो मैं किस मुंह अल्लाह के हजूर सजदा करूं, हम नमाज छोड़ देते हैं कि जो गलती गुनाह हो गया है तो अब मैं क्या करूं। भाई जैसा भी मुंह है कोई और दर है, एक ही दर है जो अल्लाह जल्ला शानहू का है। तो जब वहां पलट कर आओ तो फिर वो बातें नहीं जो दुनिया की हैं, न उसकी नाराजगी न उसका राजी होना, इन मामूलात की तरह जैसे हमारे अमूमी तल्लुकात। और फिर जब आप पलटना नसीब हो तो फिर उस पलटने में फिर दाग रख के पलटना ये भी गवारा नहीं है, क्योंकि उसकी ज़ात अलीम है, वो नहा खाने दिल में भी जानता है कि ये जो सजदा रेज है, ये जिसका हुलिया बहुत इस्लामी हुक्म के तहत आ रहा है, ये जो अपने आप को बड़ा इबादत गुजार पेश कर रहा है, इसका हाल क्या है, वो तो रब कायनात उसकी ज़ात अलीम जानता। तो जब ये समझ आए तो ये समझ उसकी अता है और जब बंदा पलटे तो फिर खालिस हाजिर हो। एक फर्द तो क्या, तमाम मखलूक अल्लाह माफ फरमाए कि उसकी गलतियां और गुनाह ही हों और उन्हें जमा कर दिया जाए, तो उसकी जो ज़ात है, उसकी जो सिफात हैं, उसके जो करम हैं, उसकी जो सिफत रहीमियत है, उससे बढ़ जाएंगी, अल्लाह की रहमत का अहाता कर सकती है। جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں. تو جب اس تعلق کی طرف بات آئے تو پھر اس خیال سے آئے, اپنی حیثیت کو سمجھتی ہوئی آئے, سمجھ آئے کہ کس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ایسا لباس پہن کر اللہ کے حضور سر بسجود ہوا کرو جو پہن کر لوگوں میں نکل سکتے ہو. اور ہم سر ڈھانپنا بمشکل اگر ڈھانپیں تو وہ جو سماں ہم نے مساجد میں رکھ رکھا ہے سر ڈھانپنے کا, اسے پہن کر کسی کو کہو بازار میں جائے, وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا یہ بھی کوئی پہننے کی چیز ہے. تو فرماتے تھے کہ اس کے حضور پیش ہو رہے تو وہ آداب بھی تو خیال کرو. تو اللہ کریم کی طرف جب پلٹنا نصیب ہو, اور یہ پہلو زندگی کے, اور یہ عمومی نہیں ہے, دنیا کے معاملات میں دو پہلو ہیں, ایک امور یہ جو ظاہر کے چل رہے ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں, دوسرے امور ہیں تکوینی امور, وہ بھی ایک مربوط نظام. جس طرح یہ ظاہر میں سورج چڑھ رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, بچے اس حیات میں آ رہے ہیں, اس حیات سے مخلوق کی روانی ہو رہی ہے, صحت مند کی صحت مند ہونا نظر آ رہا ہے, بیمار کا بیمار ہونا نظر آ رہا ہے, ایک معمولات زندگی کا تسلسل ہے. کوئی کلام کرتا ہے تو سماعت ہے, کوئی آنکھ کھولتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ کسی چیز سے جو اٹک رہتی ہے اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے. جس طرح یہ ایک نظام حیات چل رہا ہے, اسی طرح ایک دوسرا نظام حیات جو ہے وہ ہے تکوینی امور کا نظام چل رہا ہے. اور یہ جتنا نظام ہستی ہے یہ مربوط ہے اور اس کے تحت مربوط ہے, اسے اللہ جل شانہ نے تکوینی امور کے تحت ربط دے رکھا ہے تو یہ قائم ہے. اس کا کرم اور احسان ہے, لمحہ لمحہ اس کی رحمت کا محتاج ہے, تو یہ لمحات بھی گزر رہے ہیں, وگرنا یہ زندگی ختم ہو جائے, یہ تسلسل ختم ہو جائے, تو وہ تکوینی امور جو ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو تکوینی امور ہیں وہ کیا ہیں, جیسے آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ جی بیل کا ذبح کرنا بیان فرمایا گیا, کوئی بندہ قتل ہوا بنی اسرائیل کا, معمہ بن گیا, اللہ جل شانہ نے حل جو ارشاد فرمایا بیل ذبح کر کے اس کا گوشت لگایا جائے ٹکڑا اس وجود کو, تو وہ خود بتلا دے گا اٹھ کر کے کیا معاملہ ہے. تو ایک الگ واقعہ ہے, لیکن اس میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بحث چل رہی ہے, اور جو بنی اسرائیل کے سوال جواب ہیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے, بلکہ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے, ان کا چاہنا یہی ہے کہ ایسا نہ کرنا پڑے, کیونکہ وہ معاملہ بھی تو ساتھ کھلتا ہے نا. تو وہ سوال جواب ہوتے گئے, کیسا ہو, عمر کیا ہو, رنگ کیسا ہو, حال کیسا ہو, تو وہ بات چلتے چلتے آخر ایک اس طرح کا ان شرائط کا حامل جانور رہ ملا. اب جب وہ ایک جانور میسر آیا, اس جیسا اور کوئی نہیں, تو اس کی قیمت بہت بڑھ گئی. یہاں مفسرین کرام اور علماء کرام جو اس پر بحث فرماتے ہیں, تو اس واقعے کو ساتھ جو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں, حضرت جی نے بھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ہے, مجھے یاد نہیں کہ کون سا بیان ہے, لیکن یہ چیز حضرت جی کے بیانات میں آپ نے بھی ارشاد فرمائی کہ پھر اس کی جو قیمت طے ہوئی, اس کے خال میں جو دولت آ سکتی تھی وہ طے ہوئی تھی قیمت, اور اس پر پھر جو بات پہلے احادیث کی روشنی میں بیان فرمائے گی وہ یہ ہے کہ ایک صالح آدمی قریب الموت تھا, اس کے بچے غالباً دو بچے تھے, کوئی سبب نہیں تھا جو وہ چھوڑ جا رہا, ایک بچڑا تھا اس کے پاس, اس نے بچڑا جنگل کو ہانک دیا اور اللہ کے حوالے کیا کہ بار الہ اسے میری اولاد کا سبب فرمانا. اب دوسری طرف اس کی دعا کو شرف نصیب ہوا منظوری کا, انہوں نے اپنی اناد کی, جو عمل انہوں نے کیا اس کے مطابق یہ پا رہے ہیں. دوسری طرف اس کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوئی, قیمت اس کے بچوں کو ملے گی. تو تکوینی امور جو ہیں اس کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ظاہری سبب کے تحت جو معاملات ہمیں پیش آئے, अब बीमारी का सबब ज़ाहरी बात है कहीं ना कहीं से बीमारी चिमटी होगी, कोई ना कोई सबब हुआ होगा, कोई बदपरहेजी की होगी, कोई वबा होगी, कोई नक्स होगा तो बीमारी पैदा हुई। फिर जिस जगह या जिस वजूद में नक्स पैदा हुआ वहाँ जो मामले हैं वहाँ भी खराबी पैदा हो सकती है। किसी आदा ने काम करना छोड़ दिया तो वजूद में फसाद पैदा हो गया, बीमारी पैदा हो गई। अब ये ज़ाहरी तौर पर तो ये हिस्से हैं जिसमें मैं आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे वो बैल की कीमत और उसका तायुन में ज़िद कर रहे हैं। अब तकवीनी अमर में क्या मालूम कि जो गलतियां और ख़ताएं मैंने की हैं रब कायनात ने करम और एहसान फरमाया उसकी माफ़ी और तलाफ़ी का सबब अता फरमा रहा हो, कहीं फरावानी है। और वो फरावानी दूसरा पहलू कि वो फरावानी दुनिया के असबाब में मैंने सबब उसने दिए इख्तियार किए उसने फरावानी अता फरमाई, क्या मालूम वो मेरा इम्तिहान तो नहीं बन रहा। तो मामूलात और ज़िंदगी के हिस्सों को अमूमी नहीं लेना चाहिए। जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके मुताबिक चला जाए तो हिफाजत नसीब होगी। और वो पहलू ऐसा है, एक तो है कि बंदा महफूज हिस्से की तरफ रवां है, ये एक पहलू है। और इससे बड़ी हकीकत जो है अल्लाह करीम हिफाजत का सबब फरमा रहे हैं। अब जब दीन हम मौलाना के जिम्मे कर देंगे, जिक्र अजकार के लिए रोज़ ख़त भी लिखेंगे, रोज़ ईमेल भी करेंगे, मुलाकात पर तो कम लोग ये बात करते हैं चूँकि जवाब रूबरू होता है, जिक्र नहीं होता, हजरत दुआ करें मैं जिक्र करूँ। अब मियाँ खाना खा लेते हो, सो लेते हो, दुनिया का कारोबार कर लेते हो, काले शकूल जा लेते हो, मामला जिंदगी निभा लेते हो, गमी खुशी निभा लेते हो, नहीं होता तो इबादत ही नहीं होती। तो ये वो नज़ाकतें हैं जिन्हें जानना समझना और इख्तियारी पहलुओं तक इनकी निगरानी करना, ये चीजें जरूरी हैं। तो इन पहलुओं को समझने के लिए कि ये जो फरावानी आई है इसमें शुक्राने का ही पहलू है या कोई और इम्तिहान तो नहीं साथ। तो जब ये न समझ आए तो फिर अगला हिस्सा भी बयान फरमाया गया, हत्ता इदा फरहु बिमा उतु अहज़नाहुम बग़तातन फ़ैदा हुम मुबलिसून। फरमाया कि ये जो फरावानी है और इस फरावानी के बदले में वो जो एक इंसानी एक अपना, ये अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बात तो हम बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, यहाँ इन मिसालों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन समझ बड़ी आराम से आएगी। हमारे उमूर सल्तनत पर बात आती है और बड़ी मुश्किलात और कुर्बानियाँ बयान की जाती हैं। अब मैं हैरान हूँ कि ये कैसी कुर्बानी है कि जो उमूर सल्तनत पर पहुँच जाता है कुछ ही दिनों में उसका रंग भी साफ हो जाता है, उसकी सेहत भी बेहतरीन हो जाती है, एक निखार सा नजर आता है और लगता है कि पता नहीं इसको कौन सी कुव्वत मुयस्सर आ गई जो उसके वजूद से भी फूट रही है। और जिसका इक्तदार ख़त्म होता है चेहरे मुरझा जाते हैं, शक्लें उतर जाती हैं, बीमारियां 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 हर तरफ बोल रहा होता। अपने यहाँ अपने मुल्क की मिसाल अर्ज कर रहा हूँ कि यहां अगर आप गौर फरमाएं तो फिर ये बात समझ आती है कि कोई कामयाबी और उसका इतराना वो आयां हो जाता है। ये कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा मेहनत वाला काम है जिससे आपका वजूद भी बढ़ रहा है, रंग भी साफ हो रहा है, हम जिम्मेदार लोग हैं और एक दिन भी अगर जमीनों पर जाए ना तो जो हालात की सख्ती है वो उस एक दिन को वजूद से बताती है कि हाँ भाई दिन जो है गर्म था सख्त था। तो ये कैसी जिम्मेदारी है, छोटा सा निज़ाम है, ना रात पूरी आती है ना दिन पूरा आता है, वजूद एक जगह बैठ भी जाए तो दिमाग एक जगह नहीं बैठता। तो ये कैसी जिम्मेदारी है, जो ही जिम्मेदार को जिम्मेदारी मिलती है वो फैलना भी शुरू हो जाता है, रंग भी निकल आता है, सुर्ख होना शुरू हो जाता है, जिम्मेदारी से हटता है तो बुझता चला जाता है। तो ये जो फरमाया जा रहा है ना यहाँ पर कि ये जो फरागत, अब ये किसी पहलू में भी फरागत का हिस्सा है ना, क्योंकि दुनिया में मुयस्सर आना है। तो इस मुयस्सर आने में दौलत भी हो सकती है और वो हैसियत भी हो सकती है, साहिब हैसियत भी को भी तो अल्लाह ने एक चीज अता फरमाई है। तो फरमाया जब वो इतराने लगे तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया, फैजा हम मुबलिसून, बस वो हैरत सदा रह गए। अब इसमें वो पहलू जो अक्वाम आलम में तारीख इंसानी में वाक़ात गुजर चुके हैं जिन्हें कुरान करीम ने बड़ा मुफस्सल बयान फरमाया है, और यहाँ ऐसे पहलू भी बयान फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बयान फरमाया गया कि आपको नहीं मालूम था, ये गैब थे, हमने आपको इनसे मतलब फरमाया। तो उन वाक़ात में देखें कि उन कौमों को कैसी कैसी फरावानियाँ अता फरमाई थी, और उन फरावानियों के बदले में बजाय शुक्राने के जो उनकी कैफियत और उनके अल्फाज थे वो तक कुरान करीम में बयान फरमाए। जब वो इतराना और तकब्बर अपनी हदों से गुजर गया तो फिर अल्लाह जल्ला शानहू की गिरफ्त आई, और जब वो गिरफ्त आई तो फिर वो पकड़ बहुत सख्त पकड़ है, इतनी सख्त पकड़ है। और कुरान करीम में जहाँ अजाब कौमों पर नाजल किए गए वहाँ ये बात भी मिलती है कि जब फैसला अजाब का आ जाए तो फिर फैसला टलता नहीं। अल्लाह करीम अपने जो असूल बयान फरमाए हैं फिर उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद हो जाता है, फिर कोई चीखे कोई चिल्लाए कोई रोए फिर उसका रोना रोना नहीं। इसलिए आखिरी हद तक अल्लाह करीम फुर्सत देते और अपने इख्तियार को ज्यादती पर सरफ करते हुए जब कोई आखिरी हद से गुजर जाए उस पर फैसला सादर हो जाता है, और जब फिर फैसला सादर हो जाए उसके सादर होने में फिर रात कोई नहीं होती। अब जब ये मुतकब्बर होना इतराना दुनिया की फरागत में दूसरा पहलू होना तो ये चाहिए ना कि तंगी थी तकलीफ थी उससे निकले आशाइश में आए फरावानी में आए तो शुक्र की अदायगी की तरफ आते कि अल्लाह करीम का एहसान है कि उस जात ने हमें माफ़ फरमाया, हमें आसानी दी, सहूलत दी, असबाब दुनिया के इजाफी अता फरमा दिए। तो उस सारे में शुक्राने की कैफियत या वो हाल होना चाहिए बजाय इसके वो अपनी ताकत के जी मैंने ये मेहनत की है, मैंने ये कमाया है, ये मेरा फैसला है। तो हम अपनी मामूलात में ये देखते हैं जहाँ नुकसान होता है तो हम कहते हैं जी तकदीर लाई, बस जी नसीब ऐसा लिखा था, क्या हो सकता है। और जहाँ कामयाबी हो तो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र हम कहते हैं देखा मेरा फैसला कैसा था। कुरान करीम बतलाता है नुकसान अपने चज्जों से, हसूल उसकी अता से। हम क्या समझते हैं, न जानने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की, न अमल करने की कोशिश की। जब ये ताल्लक दीन इस्लाम से बासियत मुसलमान होगा तो फिर नताज इस सूरत में आएंगे। और जो कुफार हैं जो हैं ही तजावज पर, ये तो इम्तिहान गाह है, उनके लिए भी इम्तिहान है, उन्हें भी रब्बे कायनात ने फुर्सत दी है, फैसला उनका है कि वो किस राह को इंतखाब करते हैं। तो जब कोई नहीं पलटता तो बड़ी बड़ी ताकतवर कौम में अल्लाह करीम ने फरमाया कि ऐसे ताकतवर कि उन जैसा और दुनिया पे कोई, तो आद व समूद की जो कौमें और उस वक़्त के जो उनके कद काठ हैं आज भी वो उनके मदफन मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, इतना तो हमारा कद नहीं जितना उनके सर की मोटाई है। तो फिर जब अल्लाह जल्ला शानू का अजाब आया तो जैसे दरख्त खोखला दरख्त खजूर के पटकते हैं ना अंधेरी से, उससे सख्त पटके उठा उठा कर अंधेरियों ने मारे हैं पत्थरों के साथ। तो वो फिर फरमाया फायदा हम मुबलिसून, पस वो हैरत ज़दा रह गए। अब दुनिया में भी सदा, और दूसरा पहलू इस दुनिया से जब जाना है वक्त नज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में ये पहलू भी मिलता है कि मौत ऐसे सख्त है जैसे कांटेदार कोई झाड़ी हो, तो उसमें बारीक मलमल जैसा कपड़ा हो और ऐसे उसके अंदर हो, और उसको खींच कर अलग किया जाए तो जब खींचा जाए तो उस बारीक कपड़े की तार तार अलग होकर खींचती है। तो कुरान करीम फरमाता है कि डूब कर रूह जो है वो कब्ज़ करते हैं, तो पूरा वजूद इस सारे में रूह का असर जान की सूरत में इंसान महसूस करता है। कहीं कोई तकलीफ हो और वजूद जो है इस काबिल हो कि वो एहसासात हयात हों, तो उसका वो तकलीफ देना, एक बाल खींचो ना पूरे वजूद के किसी हिस्से से, तो उसका अलार्म और इतला भी जाकर दिमाग में पहुंचती है और उसकी तकलीफ का एहसास जाकर वो कलब तक असर करता है। तो जब रूह खींची जाएगी और ये वजूद जिसे बॉडी सेल्स का मजमुआ आज हम जान सके हैं, जानी सेल्स में फिर क्या मजमुए तक हम पहुंच पाएंगे, तो एक एक हयात का पहलू जब वहां से मौत होगी और हयात खींची जाएगी, तो आप सोचें ना जी, तो किस गहराई से जाकर एक एक शय से वजूद के एक एक हिस्से से जान निकलेगी। तो उस जान के निकलने के मौके पर जब हालत जो ईमान की नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फैदा हम उबले सोन, बस वो हैरत ज्यादा रह गए। तो जिनको दुनिया में अजाब पेश आया दो सूरतों में, ज़ाहरी हयात में अजाब शुरू हुआ, इख्तिताम जाकर मौत पर हुआ। जो दीन पर अमल पैरा नहीं होंगे, मानकर भी जिद और अनाद पर होंगे, तो जब वो मौका आएगा तो वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहे होंगे, और जब वो इख्तिताम आएगा तो उस हैरत में मुबतला होने से पेशतर, उस मौके के वारद होने से पहले, क्यों ना हम अपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं और उसके हजूर अपने किए की तौबा करें, क्यों ना हम अपनी गफलत से अल्लाह के हजूर माफी तलब करें, क्यों ना हम उसकी याद में ऐसे लग जाएं कि ये हयात जिसमें इंसान बह जाता है, ये जो दुनिया के मामलात जिसमें इंसान डूब जाता है, इसमें वो ताकत नसीब हो कि इसमें रहते हुए भी बंदा अल्लाह का हो, इसमें रहते हुए भी बंदा इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार बंद हो, यहाँ से जाते हुए भी अंतफारकद दुनिया व लिसानक रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह कमा काल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से रवानगी भी जो है उसके नाम से मुज़य्यन हो, अल्लाह अल्लाह करना ऐसा नसीब हो कि रूह कब्ज़ हो रही है, जान जान जो है आफरीन के सपुर्द हो रही है, और तज़करा और ज़िक्र और शौक अल्लाह अल्लाह का रवां है, और बंदा इसी अल्लाह अल्लाह में चला जाए, तो यहाँ की भी कामयाबी है, अबदी कामयाबी भी इसी में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमाए, दीन को समझना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबी मुहम्मद व अली व सहबी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व अली सहबी।
अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।